आस्तिक वापस हॉस्पिटल आ गया था। अरुणिमा को अभी तक होश नहीं आया था और वो उसके वार्ड में था। अरुणिमा के बेड के पास जो स्टूल लगा था, आस्तिक उस पर बैठा हुआ था और अरुणिमा के सुर्ख पड़े हुए चेहरे को देख रहा था। वो शांति और सुकून के साथ इस समय सो रही थी और आस्तिक उसके चेहरे को निहार रहा था। उसने कभी खुद को इतना कमजोर और टूटा हुआ महसूस नहीं किया था जितना कि उसने पिछले 2 घंटे में किया था। यहां तक कि जब उसने अरुणिमा से बोर्ड पर माफी मांगी थी, वो तभी इतना परेशान नहीं था जितना कि अब हो रहा है। ये एक नया एहसास है जो उसके अंदर उसे कमजोर कर रहा है। वो इन सब एहसासों से नफरत करता है और साथ ही वो इसे अपनाता भी है। आस्तिक ने पिता बनने का एहसास और पिता खोने का एहसास एक साथ महसूस किया है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा उससे छीन लिया गया है। ये कुछ अलग एहसास था। ये कैसा एहसास था जो उसने कभी भी अपने परिवार से महसूस नहीं किया था। श्री रायचंद ने कभी भी आस्तिक को एक बेटा नहीं बल्कि हमेशा अपना इन्वेस्टर ही समझा है और आरती की जिंदगी पर हमेशा उनका ही कंट्रोल रहा है। तो वहीं नेहा जी भी बहुत अच्छी माँ नहीं रही हैं। पावर और अपने पति को हराने की चाह में उन्होंने आस्तिक का इस्तेमाल बचपन से ही शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में आस्तिक को ट्रेनिंग लेनी थी जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से दूर होता चला गया और उसके अंदर अपने माता पिता के लिए प्रेम खत्म हो गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर अपने बच्चों के लिए पिता का प्रेम भी खत्म हो चुका था। उसे लगा बच्चे सिर्फ और सिर्फ जीवन में बाधा का काम करते हैं, वो आपकी प्रगति के बीच में आते हैं और आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। आस्तिक की कंपनी में कई बार ऐसी लड़कियां अपना जॉब छोड़ देती थीं जो कि प्रेग्नेंट होती थीं। वो अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी और इसीलिए वो नौकरी छोड़ दिया करती थी ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सके। आस्तिक को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी, इसीलिए कभी भी अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती तो आस्तिक खुद उसे नौकरी से निकाल देता और उसकी कंपनी के टर्म में ये भी शामिल था कि शादीशुदा या फिर बच्चों वाली औरतें कंपनी में काम नहीं करेंगी। आस्तिक की कंपनी में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, बस इसी के लिए कितनी सारी लड़कियों ने बच्चा ना करने का फैसला किया था। धीरे धीरे आस्तिक ऐसा हो गया कि उसे बच्चे पसंद नहीं थे और वो अपने जीवन में भी बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन आज जो उसने महसूस किया, एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को पलट के रख दिया। उसके सारे विचार, सारी धारणाएं, उसके सारे नियम उसने तोड़ दिए। आस्तिक अंदर से एक पिता के रूप में मर रहा था। उसने धीरे से अरुणिमा के सर को सहलाया। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। उसने अरुणिमा के माथे को सहलाते हुए अपने मन में अरुणिमा से कहा, मुझे पता है तुम इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है और तुम खुद भी माँ बनना चाहती थी, पर मैंने ही तुम्हें रोका था। आस्तिक के शब्द भारी हो रहे थे, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद से कहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कभी सच्चाई को जान ही ना पाओ। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब तुम्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो तुम अपनी आंखों में मेरे लिए नफरत देखोगी, मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। लेकिन इन सब में तुम्हारी भी गलती नहीं थी, ये सब मेरी गलती थी, मेरे ही पाप थे जो आज मेरे सामने आए हैं। तुम्हारे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ और इस अपराध का बोझ मुझे जीवन भर रहेगा। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ अरु, सिर्फ और सिर्फ मैं। तुम्हारी हर हालत, हर आंसू, हर मुसीबत की वजह सिर्फ मैं हूँ। आस्तिक अरुणिमा से बातें कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखकर आस्तिक खड़ा हो जाता है। डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, मिस्टर रायचंद, सब कुछ ठीक है ना? आस्तिक ने हामी में सिर हिलाया और एक नज़र अरुणिमा को देखकर उसने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट के लिए। आपने अगर सही वक्त पर अरुणिमा का ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो शायद हालत बिगड़ सकती थी। थैंक यू, उस वक्त आपने समझदारी से काम दिखाया और मैं अपनी बेवकूफ़ी के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं बस अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सका और इसीलिए मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर ने भी हामी में सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके मिस्टर रायचंद, ये कोई नई बात नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। आए दिन पेशेंट आते हैं, ठीक हो जाए तो धन्यवाद देते हैं और कुछ गलत हो जाए तो डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें इन सब की आदत है। आपको शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर मिसेज रायचंद को चेक करने आया था। डॉक्टर अरुणिमा को चेक करते हैं और उसके बाद एक फाइल में एक रिपोर्ट लिखते हुए डॉक्टर ने आस्तिक से कहा, मिसेज रायचंद बिल्कुल ठीक है, उनके ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक चल रहे हैं और नर्व्स भी काम कर रही हैं, उनकी हार्ट बीट भी नॉर्मल है, मतलब कि वो कुछ ही घंटे में होश में आ जाएंगी। आस्तिक ने जब ये सुना तो वो तुरंत कहता है, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? डॉक्टर ने आस्तिक की तरफ देखा तो आस्तिक बोला, मैं चाहता हूँ कि मिसकैरेज की न्यूज़ अरुणिमा तक ना पहुँचे, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप गले में लगाते हुए कहा, जी बिल्कुल मिस्टर रायचंद, जैसा आप ठीक समझे। वैसे भी ये आपका और आपकी वाइफ का पर्सनल मैटर है, आप दोनों बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, जब तक आपकी वाइफ यहाँ पर है तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। आस्तिक ने हामी में सिर हिलाया और फिर अरुणिमा को देखते हुए कहा, डॉक्टर मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर अरुणिमा के साथ कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा, बाकी मेरी सिक्योरिटी और मेरा असिस्टेंट नीरज यहीं पर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया और आस्तिक हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो अपने अंदर की उलझन में इतना फंसा हुआ था कि उसकी सांसें उसे भारी होती हुई महसूस हो रही थी। अपराध, बहुत दर्द और तड़प, वो सब कुछ एक साथ अंदर ही अंदर अकेले झेल रहा था, इसीलिए उसे इस वक्त शराब की ज़रूरत थी। आस्तिक खुद ही ड्राइव करता हुआ एक बार में पहुंचता है और सीधे बार के अंदर दाखिल हो जाता है। बार में कोई भी नहीं था, पूरा बार खाली था। वहां पर एक आदमी मौजूद था जो शायद बार का मैनेजर था। उसने आस्तिक को देख लिया और पहचान लिया। उसने आस्तिक से कहा, मिस्टर रायचंद आप यहाँ, लेकिन आज रात बार बंद है। आस्तिक चलता हुआ बड़े से सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, वाइन। बार का मैनेजर घबरा गया। उसने हल्की सी हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रायचंद बाहर क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है, बार में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसके लिए आज रात बार बंद है। पर अगले ही पल आस्तिकी अपनी आंखें खोली और लाल गुस्से भरी आंखों से मैनेजर को देखा, तो मैनेजर समझ गया कि आस्तिक को इनकार करना इस बार को परमानेंट बंद कर सकता है। मैनेजर डर जाता है और उसने जल्दी से हामी में सिर हिलाते हुए वो बार काउंटर की तरफ चला गया। उसने वाइन की दो बोतलें ली और एक ग्लास लेकर वो जल्दी से आस्तिक के पास आकर उसके टेबल पर रख देता है। आस्तिक ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया, जिसका सीधा सा मतलब था, जो भी पेमेंट बनती है ले लो। अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए आस्तिक ने शराब का सहारा लेना सही समझा। उसने वाइन की बोतल को खोली और उसके कड़वे घूंट को गले से नीचे उतार लिया। दर्द अभी भी गायब नहीं हुआ, बल्कि जो अंदर था वो और बाहर निकल आया। एक पूरी बोतल खाली हो गई थी, लेकिन आस्तिक पर नशा नहीं, सिर्फ गुस्सा हावी हो रहा था।
उसकी आंखें हल्की हल्की बोझिल हो रही थीं और चेहरा लाल पड़ गया था। आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब उसने कब्रिस्तान में अपने बच्चों को दफनाया था, और यही चीज उसके दिल को और ज्यादा कचोट रही थी। बार का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है और दो पुलिस वाले अंदर आते हैं। मैनेजर उन पुलिस वालों को देखकर डर गया, लेकिन वो दोनों सीधे आस्तिक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आस्तिक ने बोतल उठाई ही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े पुलिस ऑफिसर पर जाती है और उसकी निगाहें तीखी हो जाती हैं। मिस्टर आस्तिक रायचंद, यू आर अंडर अरेस्ट, एक पुलिस वाले ने कहा, तो आस्तिक ने बोतल नीचे रख दी और गुस्से में उन्हें घूर कर देखते हुए बोला, किस जुर्म में? आपके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है आपके ऊपर। आपने मिस्टर सूर्य मल्होत्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उनके पिता मिस्टर मल्होत्रा ने केस दर्ज करवाया है, आपको गिरफ्तार किया जाता है।